नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो देशों फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा के पहले चरण में फ्रांस के नीस पहुंच गए हैं। G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के अलावा श्री मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। भारतीय शिक्षण संस्थानों को वैश्विक निवेशकों और बाजार से जोड़ने वाले शिक्षा मंत्रालय के कार्यक्रम भारत इनोवेट्स की भी श्री मोदी संयुक्त रूप से उद्घाटन करेंगे तथा क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। नीस पहुंचने पर प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया गया। भारतीय समुदाय के लोगों ने भी होटल नेग्रेस्को में उनका गर्मजोशी से स्वागत सत्कार किया। श्री मोदी ने इस स्वागत के लिए उनका धन्यवाद किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ये अनुभव उनके लिए यादगार रहेगा। उन्होंने कहा कि घर से हजारों मील दूर होने के बावजूद भारतीय समुदाय का भारत के साथ जुड़ाव पहले की ही तरह मजबूत बना हुआ है। स्लोवाकिया में भारतीय राजदूत अपूर्वा श्रीवास्तव ने ब्रेस्टिलावा में आकाशवाणी संवाददाता से बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा से दोनों देशों के बीच सहयोग के नए रास्ते खुलेंगे और आर्थिक संबंध मजबूत होंगे। असम के जोरहाट में कल सुबह वायुसेना के AN-32 विमान दुर्घटना में 5 जवानों की मौत की खबर है। विमान नियमित उड़ान पर था। लैंडिंग के दौरान विमान एयरबेस में दुर्घटनाग्रस्त हो गया और उसमें आग लग गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि जवानों के साहस और राष्ट्र के प्रति उनकी सेवा को हमेशा गर्व और कृतज्ञता से याद किया जाएगा। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ नए थलसेना प्रमुख होंगे। वे फिलहाल थलसेना उप प्रमुख के रूप में कार्यरत हैं। लेफ्टिनेंट जनरल सेठ 30 जून को वर्तमान सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी के अवकाश ग्रहण करने के बाद कार्यभार संभालेंगे। मध्य प्रदेश के इंदौर में 5 दिन का ब्रिक्स कृषि सम्मेलन समाप्त हो गया है। सदस्य देशों ने इंदौर घोषणा पत्र में खाद्य सुरक्षा और कृषि में उन्नत तकनीकों के उपयोग को सर्वसम्मति से स्वीकार किया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सम्मेलन में 4 नई संस्थागत पहलों की घोषणा की गई। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के कार्यक्रम में आज आयुष मंत्रालय ऑनलाइन योग कार्यक्रम आयोजित करेगा। ये आयोजन मुरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान नई दिल्ली और हविल्ड के साथ मिलकर किया जा रहा है। ये आयोजन सुबह 6:15 से पूर्वाहन 7:35 तक आयोजित होगा। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में 3 क्रिकेट मैचों की श्रृंखला के पहले एक दिवसीय मैच में भारत ने अफगानिस्तान को 7 से हरा दिया। भारत और अफगानिस्तान के बीच दूसरा एक दिवसीय मुकाबला 17 जून को लखनऊ के भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी एकाना स्टेडियम में खेला जाएगा। उधर ICC महिला T20 विश्व कप में आज भारत अपने अभियान की शुरुआत पाकिस्तान के साथ करेगा। मैच बर्मिंघम के एस्बेस्टन में भारतीय समयानुसार शाम 7 से शुरू होगा। महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में भारत अब तक पाकिस्तान के साथ हुए मैचों में 16 में से 13 मुकाबले अपने नाम कर चुका है। शुक्रवार को मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रेफर्ड में ग्रुप बी के मैच में स्कॉटलैंड ने आयरलैंड को 40 से मात दी। पहले बल्लेबाजी करते हुए स्कॉटलैंड ने 5 पर 161 बनाए। आयरलैंड की टीम 19 ओवर और 1 गेंद में 121 पर ही सिमट गई। शुक्रवार को ही प्रतियोगिता के पहले मैच में इंग्लैंड ने श्रीलंका को 87 से हराया। उधर फीफा विश्व कप के तीसरे दिन सैन फ्रांसिस्को बे एरिना स्टेडियम में ग्रुप बी का मैच कतर और स्विट्जरलैंड के बीच ड्रॉ रहा। स्विट्जरलैंड कतर के खिलाफ 1 से आगे था, लेकिन बाद में कतर ने बराबरी का गोल किया और मुकाबला अपने नाम कर लिया। कल ग्रुप सी में ब्राजील और मोरक्को का मुकाबला भारतीय समय के अनुसार सुबह 3:30 से होगा। अब बात मौसम की। दक्षिण पश्चिम मानसून कर्नाटक तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में आगे बढ़ गया है। इसके अगले 3-4 दिन में ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में पहुंचने की संभावना है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह केरलम माहे ओडिशा तमिलनाडु और पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में अत्यधिक बारिश का अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।